ये वही चलने वाला तख्त है जिसके बारे में आवाम ने अफसाने बना लिए हैं।
हाँ शेख, ये तख्त एक परिंदा है।
ताज्जुब है। तो फिर अभी क्यों कर रुका हुआ है, उड़ता क्यों नहीं?
देख तो रहे हो शेख कि इसे रस्सियों से बांधा हुआ है। और हाँ, जब तक कोई इस पर सवार नहीं होता ये नहीं उड़ता।
मतलब जो भी इस पर बैठेगा वो उड़ेगा?
नहीं, जो भी नहीं, वो शख्स जो मोमिन हो और उसका सीना अनवार कुदसिया से भरा हुआ हो और अपने दिल को शैतान के हाथों ना बेचता हो, ऐसा बंदा इस पर बैठेगा तो ये उड़ने लगेगा। ईमान को तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। तुम अपना ईमान तोड़ना चाहते हो शेख है?
नहीं, हरगिज 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 नहीं। खुदाया, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं। कोई भी बनी बशर सिवाय नबियों के ये दावा नहीं कर सकता कि उनका दिल शैतान से पाक है और वसवसों से खाली है। खुदाया खुदाया, हमें शयातीन के जाहिर और बातिन के शर से बचा ले। क्या हुआ, क्या हुआ? खुदा रा मेरी मदद कीजिए। ये जादू है या मौजदा? मुसलमानों, खुदा रा मेरी मदद करो। तौबा करता हूँ। मुसलमानों मत पकड़ो। بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
اهلا وسهلا الشيخ
आलम, आप कौन?
मैं मुख्तार हूँ जनाब नजदत इब्न आमिर। मुख्तार लश्कर मक्का का सिपह सालार।
मैंने सुना है कि जुबैर के बेटे का तख्त भी तख्त सुलेमान नबी की तरह उड़ता है। इस आस्ताने के खादिम ने और एक अजीब बात कही। उसका दावा है कि जो भी इस तख्त पर बैठेगा उसका कल्ब शैतानी वसवसों से पाक होगा तो ये उड़ने लगेगा।
हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए कि शैतान फिलहकीकत उसमें नफूज न करे, वो मलकूत आला की तरफ उरूज पाने का हक रखता है और तमाम इलाही निशानियां उस जैसे बंदे के सामने मुती और फरमाबरदार हो जाती है।
वो शख्स सुबैर का बेटा है?
नहीं, इब्न जुबैर भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान है जिसे खताएं सरजद होती हैं।
तो फिर इस तख्त का आखिर क्या किस्सा है? क्या अवाम उन्नास ने इसकी तारीफें शुरू कर दी है?
हाँ, मैंने भी चंद लम्हों पहले इस तख्त के मौजजात में से एक मौजजा अपनी आंखों से देखा। आप इस तख्त के बारे में निगरान हो गए शेख साहब। वो शख्स जो एक बेजान चीज के आगे लाचार और मजबूर हो जाए और उसका कल्ब शैतानी वसवसों से भरा हुआ हो, ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी दयानतदारी का दावा करे और हुक्म चलाए और अपने आप को बरहक कहलवाए और दूसरों को बातिल करार दे?
मकसद क्या है तुम्हारा?
रहने दो शेख, اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں
آپ؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نہ چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.
خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟
ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کے تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟
کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے دوام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو.
کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟
کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟
یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی.
بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے.
درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟
خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں.
سارے معاملات حسب توقع ہیں نا شیخ؟
آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجئے۔
ضرور ضرور آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ خدا سلامت رکھے شیخ۔
ہم بے صبری سے انتظار کریں گے۔ فی امان اللہ۔
خدا آپ لوگوں کو اجر دے۔
فی امان اللہ۔
خدا حافظ شیخ۔
جیش اللہ
حافظ بیت اللہ۔
جیش اللہ
حافظ بیت اللہ۔
جیش اللہ
حافظ بیت اللہ۔
جیش اللہ
حافظ۔
مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خشک دماغ والے متعصب اور خرافہ پرست حیوانات ہیں کہ جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے۔ تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آ گئے اور انسان بن گئے؟
کچھ خاص نہیں کیا، تھوڑا سا تہذیب نفس، تزکیہ روح اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے باوجود مجھے اب بھی یہی گمان ہے کہ اس گروہ کا یہ چکر مصلحت سے بھرپور ہے۔ ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کریں گے۔
کاش ایسا کوئی چارہ کار ہوتا کہ ان کے کیے ہوئے کو انہیں کے پیروں میں ڈال سکتے۔ ڈر ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا دے۔
فی الحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ نظروں میں خار اور گلے میں ہڈی لے کر پھرنے والے یہ لوگ، جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگائی، خدا کی قسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنی صف میں کھڑا نہ ہونے دیتا۔ بہرحال آپ فکر مت کیجیے، ایسی تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔
فتنہ گر بیت شکن اور سرکش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا۔ میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں۔ حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے۔ ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا۔ اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں۔ اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ۔ ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو، اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو۔ میں حجاز کے نادم ہونے والوں کو امان دیتا ہوں، مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں۔ ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں۔ اب تم لوگ خود ہی سمجھو۔
یہ گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں۔
نہیں مصعب، نہیں، تم لشکر کے میسرہ کے علمدار ہو، جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے۔
جسارت ہے بھائی جان، ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے، شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے۔
مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو۔ تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں۔
اے اجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے۔ اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اعصاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی۔ یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ پھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسلانے زبیر، تم لوگ تو فتنہ گھری میں سب سے آگے ہو پر فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے۔ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا درد رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو؟
ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں۔ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ منظر۔
جی بھائی جان۔
اس ملون کو جواب دو۔
بسا دے شوق۔
بانو جان،
دل گھبرا رہا ہے زبیدہ، ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے۔
مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے، مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں۔
منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا۔
بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں۔
آؤ
کہاں میری مانو،
مجھے منزل کو ایک پیغام بھیجوانا ہوگا۔
آرام سے خواجہ، कजावे पर बैठो।
कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ।
ऐ नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसरा ने जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुए बाज, कुत्ते बाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती।
मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया।
इस दो बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है।
ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है, खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर पिसरे जुबैर इब्ने अवाम, और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोजखी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोजख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह।
बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मश करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए।
ऐ नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मरते मैदान साबित कर सको।
अलोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी मां को इसके गम में रुला दो।
क्या मुंसर के बाद अब जाफर की बारी है?
मुंसर की मुजाहिदात का जर्जाय मत करो।
मुंसर इस मैदान का हरीफ नहीं था, मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंसर को नहीं।
मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी, खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुख्सत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए।
नहीं बिन मती,
मुझसे लड़े।
कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है?
नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास।
मैंने पूछा कौन हो?
जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं।
इसका जवाब दो।
तब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल, कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा।
जाओ, मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा।
आज के लिए इतनी जंग काफी है, जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
Oh!
तुम्हारे हाथों को चूम लूंगा।
जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसाब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना, इस जंग बंदी के धोखे में मत आना। तुम लोग, जंग अब शुरू हुई है। इब्ने नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है।
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.
लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में आ जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है।
मुझे अपने गम में शरीक जानी है। मुंजर ने गरत मंदाना जंग लड़ी, जवां मर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरी के रहमत करे।
खुदाबंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जाबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार वक्त पेकार एक मौजजागर है जो है कहार। बेशक यदुल्लाही का लकब तुम्हारे शाया निशान है,
शुक्रिया।
तुम्हारे बिजली के से हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ आराज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे?
मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्ने नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा।
अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं?
हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैठक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं।
मैं समझ गया, यानी जंग और जंगबंदी बैठक वक्त और वो भी हर जानिब से।
जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मकदार भी आम है। हमारी जंग और जंगबंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहाँ दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहाँ हम जंगबंदी कर लें, और जहाँ हमारे फरार की तवक्को रखता है वहाँ हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारे तमाम तरलमदार अपने अपने वजायफ को लफ्ज पर लफ्ज और पर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसा बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया।
मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के से हर तरह के सांड को ढेर कर देता है।
तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही जर्ब में सुला दिया उसने?
मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दरे खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही जर्ब में फारिक याहिया अली शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है।
मेरा दिल मंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा।
उसके भाई मुसब का कसूर है, अगर वो खामखा दखल ना देता तो मंजर भी जिंदा रह जाता।
अभी तुमने देखा ही क्या है, मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए।
मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई।
जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना मानूं।
शाह के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और हौसिया और 72 शहदाए करबला का खूनी दुश्मन और काबिल, वो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है। उसका और उसके साथियों का नजीस वजूद दार पे लटकाया जाएगा।
क्या कर रहे हो शेख? वो सबको अपने भाई का बहाना था, तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा?
इस लश्कर के सिपा सालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर के सिपा सालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपा सालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला कहाँ है? यदुल्ला
बकवास बंद करो चाहिए की औलाद, हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसा डालता जब तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि खवारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ू। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
Thank you.
रहे हैं। हरम को बचाओ मुसलमानों, काबा को बचाओ।
आशिया घबराओ मत, इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है।
खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती, आसमान क्यों नहीं फट जाता?
उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो,
या तो यजीद अब्रहा नहीं है या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाने काबा की मौजा न दिखाने की कोई हिम्मत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे।
क्या कर रहे हैं मुसा?
बज़ाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं।
अजीब अहमक लोग हैं, खाना काबा को जलना चाहिए। ये यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद बहुत खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार, क्या कर रहे हो?
क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में चल रहा है? हमें आग बुझानी होगी।
नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाना काबा को चलना चाहिए। सब जान ले के यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं।
ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं?
भाइयों,
जिसको भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। बात सुनिए, हमें खाने काबा को बुझाना होगा।